भो मित्रगणाः, स्वागतमस्ति रेडियो मधुबनस्य मञ्चे। अद्य अहम् अतीव आनन्दितम् अस्मि यत् अद्य एतत् पठामि संस्कृतम् कार्यक्रमस्य शतं पाठं सम्पूर्णं भवति। गतरविवासरे अहम् महाभारतस्य रचना इति बालनाटिकायाः प्रथमं भागः प्रेषितम् अकुर्म। अद्य द्वितीयस्य भागस्य प्रस्तुतिं करोमि। अर्थात हे मित्रगण, आपका रेडियो मधुबन के मंच पर स्वागत है और आज मैं अतीव आनंदित हूँ क्योंकि हमारे पठामी संस्कृतम कार्यक्रम की ये आज 100 कड़ियाँ पूरी हो जाएंगी। पिछले रविवार को हमने महाभारत की रचना नामक बाल नाटिका का पहला हिस्सा सुना जिसे मैंने प्रेषित किया था और आज मैं इसी रचना का दूसरा भाग प्रस्तुत कर रही हूँ। वयाश्रुतम् यत् श्री ब्रह्मदेवः व्यासस्य कुटीरे आगच्छति तस्य चिन्तायाः कारणं ज्ञातुम् इच्छति। व्यासः ताम् कथयति यत् सः महाभारतस्य काव्यस्य रचनां कृतः। तत्पश्चात् किं कथयति व्यासः? पिछले रविवार को हमने सुना कि श्री ब्रह्मदेव व्यास की कुटिया में पधारे हैं और उनकी चिंता का कारण जानना चाहते हैं, तो व्यास उन्हें बताते हैं कि उन्होंने महाभारत काव्य की रचना की है। उसके पश्चात किम कथयति व्यासः, उसके पश्चात व्यास ने क्या कहा, इसे आज की कड़ी में हम सुनेंगे। व्यासः कथयति, भगवन् पांडवानां विजयस्य एषा गाथा अतीव विस्तृता अस्ति। मया श्लोकरचना कृता तथा च मनसि संकलिता, इदानीं तेषां श्लोकानां संख्या 200,000 इति अभवत्। एतादृशं प्रदीर्घं काव्यं लेखितुं कस्य सामर्थ्यं भवेत्। अर्थात व्यास कहते हैं कि भगवन, ये पांडवों के विजय की यह गाथा अत्यंत विस्तृत है। मैंने जिन श्लोकों की रचना की है और उन्हें अपने मन में संकलित करके रखा हुआ है, उनकी संख्या 200,000 के आसपास पहुंच गई है। इतने बड़े काव्य को लिखने के लिए कौन समर्थ है? ब्रह्मदेवः कथयति, वत्स व्यास, विश्वे एकः एव तादृशं सामर्थ्यवान् अस्ति, सः अस्ति बुद्धिमान् श्री गणेशः। भवान् तमेव प्रार्थनापूर्वकं निवेदयतु, परन्तु अवधानं भवतु, श्रीगणेशः विनोदप्रियः अस्ति, सः किञ्चित् चटुलता अवश्यं दर्शयितुम् अर्हति। अर्थात् ब्रह्मदेव कहते हैं कि वत्स व्यास, विश्व में उस प्रकार का सामर्थ्य रखने वाला एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है बुद्धिमान श्री गणेश, तो आप उन्हें ही प्रार्थना पूर्वक निवेदन करके यहाँ बुलाइए, किंतु अवधानम भवतु, लेकिन ध्यान रखिए, संभल करके रहिए, क्योंकि श्री गणेशः विनोद प्रियः अस्ति, श्री गणेश विनोद प्रिय हैं, उन्हें विनोद करना अच्छा लगता है। सः किंचितम चटुलता अवश्यम दर्शयितुम अर्हति, वह कुछ न कुछ चातुरी जरूर दिखाएंगे। द्वौ अपि हसतः, इस बात पर ब्रह्मदेव और व्यास दोनों हंसते हैं। व्यासः कथयति, तत्र सावधानं भवामि भगवन्, यावत् शक्यं सः लेखनकार्ये व्यस्तः भूत्वा चाटुल्यं नैव प्रदर्शयेत् तथा करोमि। अर्थात व्यास कहते हैं कि तब तो मैं सावधान ही रहूंगा भगवन, ऐसा कुछ करूंगा कि वह लेखन कार्य में इतने व्यस्त रहें कि कोई चातुरी नहीं दिखा सकें, इस प्रकार मैं कोई प्रयास करूंगा। तथा करोमि, ऐसा कोई प्रयास मैं करूंगा। ब्रह्मदेवः कथयति, गच्छामि अहम्, भवतः कार्यम संपन्नतां यातु, तो मैं चलता हूँ, आपके कार्य को सफलता मिले, आपका कार्य संपन्न हो, यही मैं शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ। तो इस प्रकार ब्रह्मदेव वहाँ से निकलते हैं और आगे क्या होता है कि व्यास मुनि गणेश जी की प्रार्थना करके उन्हें आमंत्रित करते हैं और गणेश जी उपस्थित होते हैं। तब व्यास कहते हैं, व्यासः कथयति, नमस्तुभ्यं श्री गणेशाय, भवान् मम प्रार्थनां श्रुत्वा अत्र उपस्थितः, अतः संतुष्टोऽस्मि, स्वागतं भगवतः। अर्थात व्यास उन्हें नमस्कार करते हैं, हे श्री गणेश, आपको नमस्कार है, आप मेरी प्रार्थना सुन करके यहाँ उपस्थित हुए, इसलिए मुझे परम संतोष हुआ, आपका स्वागत है। गणेशः कथयति, भवादृशैः विद्वज्जनैः सह चर्चां कर्तुम् अवसरः प्राप्नोमि चेत् संतुष्टः भवामि। कथयतु, कया इच्छया भवता मम स्मरणं कृतम्। गणेश कहते हैं कि आपके समान विद्वज्जनों से चर्चा करने का अवसर मिलता है तो मैं भी संतुष्ट होता हूँ, तो कहिए आपने कौन सी इच्छा से मेरा स्मरण किया। अब नाटक का यह भाग यहाँ रुक जाता है और रंगमंच के दूसरे हिस्से में हम जाते हैं, जहाँ गणेश और उनका मूषक आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो क्या चर्चा होती है उनके बीच? गणेशः हसति, हा 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 मूषक, मया मुनिश्रेष्ठ व्यासस्य कृते समस्या उत्पादिता एव। हा 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 मूषक, सुन, मैंने मुनिश्रेष्ठ व्यास के लिए एक समस्या खड़ी कर दी। तो मूषक कहता है, मूषकः अपि विहसति, कथयति, भवतः स्वभावानुकूलं वर्तनम् एतत्, भवान् बुद्धिमतां परीक्षां कर्तुम् उद्युक्तः एव अस्ति। मुनिवरेण सह भवता का चेष्टा कृता? तो मूषक भी हंसता है और कहता है कि यह तो आपके स्वभाव के अनुकूल ही वर्तन हुआ, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्तियों की परीक्षा लेने में आपको बहुत आनंद आता है, आप हमेशा उसके लिए उद्युक्त रहते हैं, हमेशा उसके लिए तैयार रहते हैं। तो मुनिवर व्यास के लिए आपने कौन सी चेष्टा की, कौन सा कौतुक किया? गणेशः कथयति, महर्षिणा व्यासेन एकं महान्तं इतिहासं महाकाव्यबद्धं कृतम्। असौ विश्वस्य महानतमः ग्रन्थः भविष्यति, अत्र नास्ति कोऽपि संशयः। महर्षि माम निवेदितवान यत् मया तस्य ग्रंथस्य लेखनकार्यं विधातव्यम् इति। तो गणेश जो है वो मूषक को बताते हैं कि महर्षि व्यास ने एक महान इतिहास को महाकाव्य में बांधा है और यह विश्व का महानतम ग्रंथ होगा, इसमें कोई भी शंका, कोई भी संशय नहीं है। तो महर्षि से मैंने कहा कि उनके ग्रंथ के लेखन कार्य को मैं संपन्न करूंगा। मूषकः वदति, उचित प्रस्तावः एव श्री गणेश, एतादृशा महान ग्रंथस्य रचना यदि भवति तर्हि भवता विना कः लेखनकार्यं कर्तुं शक्नुयात्, तत्र भवान् काम चेष्टां कृतवान्। तो मूषक कहता है कि यह तो सही हुआ, उचित ही प्रस्ताव था, क्योंकि इतने महान ग्रंथ की रचना यदि करनी हो तो आपके बिना इसका लेखन करने में कौन समर्थ है, लेकिन आपने उनके साथ कौन सा कौतुक रचा, कौन सा मजाक किया। गणेशः कथयति, हा हा, मया एका युक्तिः कृता, मया उक्तं मम लेखनी मध्ये स्थगिता न भवेत्, तावत् शीघ्रगत्या श्लोककथनं करणीयं भवेत्, यदि श्लोकरचनां कर्तुं चिन्तनं कर्तुं भवान् मध्ये स्थगनं करोति तदा मम लेखनी अपि स्थगिता भविष्यति, ततः अग्रे अहम् न लिखामि। तो गणेश उनको बताते हैं कि मैंने एक युक्ति व्यास के सम्मुख रखी, मैंने उनको कहा कि मम लेखनी मध्ये स्थगिता न भवेत्, मेरी लेखनी बीच में ना रुके, तावत् शीघ्रगत्या, इतनी शीघ्र गति से श्लोक कथनम करणीयम भवेत्, आपको इतनी शीघ्र गति से श्लोकों को बताना होगा। यदि श्लोक रचना करने के लिए या सोचने के लिए आप बीच में ही रुकेंगे तब मेरी लेखनी भी स्थगित हो जाएगी, रुक जाएगी और उसके आगे मैं नहीं लिखूंगा। पश्चात गणेशः कथयति, परन्तु मूषक महर्षि व्यासः अपि बुद्धिमान अस्ति। परन्तु हे मूषक सुनो कि महर्षि व्यास भी बुद्धिमान हैं। तो इस पर मूषक और गणेश जी के बीच में व्यास की बुद्धिमानी को लेकर के क्या बात होती है, इसे हम मित्रों अगले रविवार को सुनेंगे। आज हम यहीं रुकते हैं। तुम पढ़ते रहो संस्कृत, सुनते रहो पठामी संस्कृतम कार्यक्रम, सुनते रहो रेडियो मधुबन और मुस्कुराते रहो। नमस्कार।